नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। नमस्कार मनोज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
और अब तो पेरिस ओलंपिक के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आज की मुख्य खबर भी पेरिस ओलंपिक से ही जुड़ी हुई है। हेडलाइंस आपको सबसे पहले बताते हैं, खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल की अंतिम सूची को मंजूरी दी। इसमें 117 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्य शामिल। स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में कल भारत के सुमित नागल का मुकाबला अर्जेंटीना के मरियानो नवाने से होगा। आईसीसी की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर बरकरार। युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल छठे स्थान पर पहुंचे। और भारत के शौर्य बाबा ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है, जिसमें खेल अधिकारी शामिल हैं। ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था, उनमें से केवल गोला फेंक की एथलीट आभा खटुआ का नाम सूची में नहीं है। एक रिपोर्ट।
खिलाड़ियों की सूची में सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स हैं, जिसमें 11 महिलाएं और 18 पुरुष हैं। उनके बाद निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस में भारत के 8 जबकि बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता KPV सिंधु सहित 7 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में 6-6 खिलाड़ी ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसके बाद गोल्फ में 4, टेनिस में 3, तैराकी और सेलिंग में 2-2 खिलाड़ी हैं। वहीं घुड़सवारी, जूडो, रोइंग और भारोत्तोलन में 1-1 खिलाड़ी भाग लेंगे। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू दल में शामिल एकमात्र भारोत्तोलक हैं। वो महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 119 खिलाड़ी ने भाग लिया था, जिन्होंने 7 पदक जीते थे। इनमें नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में जीता गया ऐतिहासिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। चोपड़ा पेरिस में अपने खिताब का बचाव करने के लिए उतरेंगे। लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पूर्व निशानेबाज गगन नारंग को दल का प्रमुख बनाया गया है। नारंग भारतीय ओलंपिक संघ में उपाध्यक्ष भी हैं। स्पोर्ट्स कैन जया भारती।
मनोज जी, टोक्यो ओलंपिक में हमारा 119 खिलाड़ियों का दल गया था, इस बार 117 खिलाड़ी हैं, लेकिन दावेदारी बहुत मजबूत है।
दावेदारी मजबूत है जी, और ईश्वर ने चाहा तो जो प्लेयर्स की मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी और भारत दहाई की संख्या तक पहुंचेगा। क्योंकि जैसे मीराबाई चानू का आपने नाम लिया थोड़ी देर पहले, तो मीराबाई चानू स्नैच में जिस तरह से उन्होंने हैरतअंगेज तरीके से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, 90 kg के बहुत करीब पहुंच गई हैं। अगर उस बैरियर को उन्होंने तोड़ा तो फिर तो मैं समझता हूं कि स्वर्ण पदक जीतने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन चुनौती चीन की उनके लिए ज्यादा प्रमुख है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा तो है ही, जो 90 मीटर के बहुत करीब पहुंच गए हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। जितनी विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसमें उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी हॉकी टीम जो 2022-23 में प्रो हॉकी लीग में भी तीसरे स्थान पर रही, पिछले ओलंपिक में 41 साल के बाद भारत ने पदक जीता, लंबा इंतजार जो है खत्म कराया। कुश्ती में 5 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। बॉक्सिंग में पिछले बार की मेडलिस्ट जो है लवलीना यहां पर मौजूद होंगी, पीवी सिंधु पिछली बार की मेडलिस्ट वो भी मौजूद हैं।
2 बार जीत चुकी है और हैट्रिक की उम्मीद कर रहे हैं पीवी सिंधु से तो।
जी हाँ बिल्कुल, और बाकी ये है कि अगर वो पूरी तरह से अगर फिट रहती हैं तो मुझे लगता है फिर उनकी हैट्रिक होने में कोई संदेह नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बैडमिंटन और शूटिंग में बहुत से पदकों की आप उम्मीद कर सकते हैं। डबल्स जोड़ी हमारी जो है दुनिया में नंबर 1 रही। शूटिंग में देखें तो आप इस बार 21 शूटर्स ने जो है क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए।
सबसे अधिक नंबर्स है अब तक का शूटिंग में।
जी हाँ बिल्कुल, और तो अब शूटिंग में भी अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं समझता हूं कि बस निशाना सही जगह पर लगना चाहिए और फिर उन्हें पदक से कोई नहीं रोक सकता। तो दहाई की संख्या तक पहुंचना बहुत मुझे लग रहा है कि अभी से उसके हमें तो खौफ आने लगे हैं।
जी बिल्कुल, और अंबार लगे पदकों का इस बार ओलंपिक्स में, यही उम्मीद करती हूं। और हॉकी की अभी आपने बात की, तो जैसे हम कह रहे कि 19 खिलाड़ी हैं हॉकी के इस बार इस दल में, तो भारतीय हॉकी टीम का अब तक का कैसा सफर है ओलंपिक्स पर, इस पर खास रिपोर्ट है विशाल की, आइए सुनते हैं।
ओलंपिक के मंच पर भारत का इतिहास हॉकी में काफी सुनहरा रहा है। भारत के नाम हॉकी में रिकॉर्ड 8 स्वर्ण पदक हैं, जिनमें से 6 लगातार जीते गए। ये ऐसे आंकड़े हैं जो एक समय पर हॉकी के खेल में भारत के वर्चस्व को दिखाते हैं। 1928 ओलंपिक में अपने पहले मैच में ही भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। उस ओलंपिक में भारत ने 5 मैच खेले थे और कुल 29 गोल दागे थे और एक भी गोल उनके खिलाफ नहीं हुआ था। इस दौरान ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से 14 गोल आए थे। इसके बाद तो ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख अंग ही बन गए थे और 1932 और 1936 ओलंपिक में भी उन्होंने अपने दम पर भारत को 2 और ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए थे और अपनी कप्तानी में ही भारत को गोल्ड मेडल की हैट्रिक बनवाई। भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1948 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तब तक भारत को ध्यानचंद के अलावा एक और दिग्गज मिल चुके थे और वे थे बलबीर सिंह सीनियर, जिन्होंने एक बार फिर भारत को लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे। इसके अलावा 1964 और 1980 के संस्करणों में भारत ने हॉकी में 2 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। 41 साल तक रहे सूखे के बाद भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था और उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम पदक के रंग को बदलने का इरादा लेकर मैदान में उतरेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
मनोज जी, टोक्यो में हमने कांस्य पदक जीता हॉकी में और एशियन गेम्स में जो पिछले साल हुए उसमें गोल्ड जीता, तो उम्मीदें बहुत बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन जैसे FIH 2022 से इसका तो आपने बताया तीसरे स्थान पर रहे FIH प्रो हॉकी में, लेकिन इस बार थोड़ा सा निराशाजनक रहा, 7वें स्थान पर रहे। तो कुल मिलाकर कई बार लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे और कई बार लगता है कि अब जैसे बड़ी बड़ी पूल दिग्गज देश हैं, भारतीय पूल में ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, तो कैसा रह सकता है?
ये तो आपने दुखती हक पर उंगली रखी है। देखिए, अगर हम 7वें स्थान पर रहे थे ना, तो उसकी एक वजह थी हमने कई युवा खिलाड़ियों को मौके दिए थे और हम कोशिश यही कर रहे थे कि हम अपनी इस टीम एक्सपेरिमेंटल टीम को में से कई खिलाड़ी हमें ओलंपिक के लिए मिलेंगे। रही बात आपने कहा कि ग्रुपिंग की, तो निश्चित तौर पर ग्रुप बहुत मुश्किल है भारत का, आसान नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, मैं मुश्किल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हम भी, आपने बताया, एशियन गेम के चैंपियन हैं। तो अगर आप देखें तो बेल्जियम ओलंपिक चैंपियन है, वो आपके पूल में, ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है, वो आपके पूल में, हम तीसरे नंबर पर रहे थे, हम मतलब हम एक ही पूल में हैं, अर्जेंटीना भी पूर्व ओलंपिक चैंपियन रह चुका है, तो पूल इतना आसान नहीं है। तो यहाँ भारतीय खिलाड़ियों का कड़ा इम्तिहान है, अच्छा तालमेल और खासकर पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करने की क्षमता,
यही ये अभी तक का जो सबसे मुश्किल टास्क है भारतीय हॉकी टीम के लिए, कि पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलना।
जी हाँ, बिल्कुल, अगर इस चीज में मोर्चा फतेह कर लिया भारत ने, तो मैं समझता हूँ फिर सामने चाहे बेल्जियम आए, चाहे कोई आए, अर्जेंटीना आए, भारत कड़ी टक्कर देगा और जीत भी सकता है भारत।
पर अभी हाल में जैसे पेरिस ओलंपिक जाने से पहले भारतीय टीम स्विट्जरलैंड के माइक हॉर्न्स भी गई है, ताकि शारीरिक रूप से फिट रहने के अलावा मानसिक रूप से भी उनको फिट रखा जाए। तो मतलब बहुत एडवेंचरस ट्रिप के लिए उनको भेजा गया, उसके बाद अभ्यास शिविर में भी भाग ले रही है भारतीय टीम।
मुझे
तो,
खुशी इस बात की है कि जो आपने जिस ट्रिप का जिक्र किया, क्योंकि अमूमन होता यह था कि ओलंपिक से पहले जब यूरोपीय दौरे पर भारतीय टीम जाती थी उसमें कुछ खिलाड़ी चोटिल हो जाते थे, इंजर्ड हो जाते थे, तो इस बार अच्छी बात यह है कि सभी, एक तो हमारे खिलाड़ी फिट हैं और पूरी तरह से कृत संकल्प हैं कि अपने पदक को, अपना पदक का कांस्य पदक का जो रंग है वो इस बार जरूर बदला जाए।
बिल्कुल, यही उम्मीद करते हैं। और अब अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहे हैं ओलंपिक्स, तो देखते हैं कि भारत का रंग कैसा रहता है इन खेलों में। और मनोज जी, हम पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो पेरिस ओलंपिक से पहले ही सुमित नागल जो एकमात्र सिंगल्स चुनौती पेश कर रहे हैं टेनिस में, तो स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और वो कल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और अब बृहस्पतिवार को यानी कल उनका प्री क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होना है अर्जेंटीना के मरियानो नवाने से। और उन्होंने जो पहले दौर में हराया था वो स्वीडन के ही खिलाड़ी थे एलियास यमेर को 6-4 6-3 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई थी। कल जो रैंकिंग आई बहुत बड़ी बात थी सुमित नागल के लिए, 68वें स्थान पर पहुंच गए और पेरिस ओलंपिक से पहले उनका पहले दौर में जीत जाना, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाना, एक बहुत ही मजबूती देने वाली बात है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एलियास यमेर तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई वो रैंकिंग में उनसे काफी पीछे थे, लेकिन अब उनके सामने जो मारियानो आ रहे हैं अर्जेंटीना के, उनकी रैंकिंग काफी अच्छी रही है, उनकी जो 29वीं रैंकिंग जो ब्यूनस आयरस से ये ताल्लुक रखते हैं, और इनका प्रदर्शन जो है, खासकर अगर आप इनकी टेक्निक देखें, बिल्कुल दो डबल हैंडेड बैकहैंड शॉट लगाने में माहिर हैं, बहुत इनकी गणना की जाती है, शायद आप कहिए वन ऑफ द बेस्ट लैटिन अमेरिकन प्लेयर हैं ये, खासकर बैकहैंड से शॉट लगाने के मामले में। तो मुझे लगता है कि सुमित नागल का असली इम्तिहान इसी मुकाबले को लेकर है, लेकिन ये मुकाबला अगर उन्होंने जीत लिया तो मैं समझता हूं ये पेरिस ओलंपिक से पहले उनके लिए एक तरह से टॉनिक का काम कर सकता है,
क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी हमने देखा था सीडेड खिलाड़ी को हराया था और एक रिकॉर्ड ही बनाया था उन्होंने भारतीय इतिहास में टेनिस में भी। तो यही उम्मीद की जा रही है कि कल वो मरियानो नवाने को भी हराकर एक और उपलब्धि हासिल करेंगे।
जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब जो है ना समय बहुत कम है और क्योंकि अब मुकाबले जो है पेरिस ओलंपिक के वो क्ले कोर्ट पर होने हैं, तो आपको बेस लाइन पर खड़े होकर लंबी लंबी रैलियों के लिए तैयारी करनी होगी और खासकर अपोनेंट की गलतियों का इंतजार करना होगा कि वो कहां गलती करे और आप अपना लगातार अपना अच्छा खेल दिखाएं और धैर्य का परिचय दें, जीत उसी की होगी और मुझे लगता है उसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं नागल।
और ऐसा देखा गया है कि जो सुमित नागल है वो क्ले कोर्ट पे अच्छा परफॉर्म करते हैं,
करते रहे हैं जी, जी हाँ। बीच में ठीक है टाइटल तो देखिए जी सिंगल्स में बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप एक या दो राउंड भी जीतते हैं तो उससे भी आप अपना मनोबल आपका जरूर बढ़ता है।
बिल्कुल, पर पुरुष डबल्स में भी कल सुमित नागल ने चुनौती पेश की पोलैंड के कैरोल द्रेविकी के साथ, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर और लुका वान एशे ने उन्हें हरा दिया। और अब बात आईसीसी रैंकिंग की। आईसीसी की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ T20 बल्लेबाजों की सूची में एक स्थान के नुकसान से आठवें पायदान पर हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 श्रृंखला में भारत की 4-1 की जीत के बाद रैंकिंग को अपडेट किया गया है। और इसके अलावा अगर जायसवाल का बताएं तो उन्हें यशस्वी जायसवाल को 4 स्थान का फायदा हुआ है। शुभमन गिल 36 स्थान की लंबी छलांग के साथ 37वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में कोई भारतीय शीर्ष 10 में नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रृंखला से अक्षर पटेल को ब्रेक दिया गया था और वे 4 स्थान के नुकसान से 13वें स्थान पर खिसक गए हैं। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और वाशिंगटन सुंदर को रैंकिंग में फायदा हुआ है। 3 मैच में 8 विकेट चटकाने वाले मुकेश 36 स्थान के फायदे से 46वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और ऑलराउंडर की सूची में भारत के हार्दिक पांड्या 4 स्थान के नुकसान से 6 स्थान पर खिसक गए हैं। सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में जिम्बाब्वे दौरे में भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और खासकर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में उनको खेलने का मौका नहीं मिला एक भी मैच, लेकिन जिम्बाब्वे के साथ श्रृंखला में T20 श्रृंखला में 141 रन की पारी खेली।
जी हाँ बिल्कुल, एक उनकी 36 रन की पारी और एक उनकी 93 रन नॉट आउट की पारी, वो भी 51 गेंदों पर। अगर आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंटली आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आपकी रैंकिंग में सुधार देखने को मिला, इसी तरीके से अगर आप बॉलर्स की अभी आपने जैसे जिक्र किया मुकेश कुमार ने 3 मैचों में 8 विकेट चटकाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया और 36 पायदान की उन्होंने छलांग लगाई लंबी, 46वें स्थान पर पहुंचे हैं, जबकि इससे पहले कहीं उनको रैंकिंग में गिना ही नहीं जाता था। सूर्य कुमार यादव का जहां तक सवाल है, उन्होंने भी जो है वर्ल्ड कप में, क्योंकि यहां तो वो टीम में नहीं थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन वहां भी उन्होंने कुछ एक बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, खासकर अमेरिका और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। जब सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम थी सामने तो 47 रन की पारी और एक सहयोगी की भूमिका उन्होंने निभाई रोहित शर्मा के, 31 रन की उनकी पारी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो भी कमाल की थी।
और अटकलें भी लग रही हैं कि श्रीलंका दौरे में उन्हें शायद कप्तानी भी सौंपी जाए, हार्दिक पांड्या को या सूर्य कुमार यादव।
जी बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव का दावा बहुत मजबूत है क्योंकि वो KKR की तरफ से पहले खेल भी चुके हैं एक जमाने में और वाइस कैप्टन उनको बनाया था गौतम गंभीर ने, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोकप्रिय करैक्टर हैं वो, रोहित शर्मा के बाद सबसे लोकप्रिय करैक्टर अगर कोई है बतौर कप्तान तो वो सूर्य कुमार यादव है, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा, दोनों ही जगह उन्होंने जो अपने उनके साथियों का दिल जीता उन्होंने।
अब जाते जाते कुछ अन्य खेल खबरों पर नजर। भारत के शौर्य बाबा ने अमेरिका के ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। लड़कों के सिंगल सेमीफाइनल में शौर्य को मिस्र के मोहम्मद जकारिया ने 3-0 से हरा दिया। विश्व जूनियर चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष स्क्वाश खिलाड़ी द्वारा हासिल किया गया यह दूसरा पदक है। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उपक्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार 2023 के वैश्विक विजेताओं की घोषणा की, जिसमें 6 उभरते हुए देश मेक्सिको, ओमान, नीदरलैंड्स, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और स्कॉटलैंड शामिल है। समय कह रहा है अब अनुमति ली जाए। मनोज जी, आप स्टूडियो में आए, चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं। प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स कैन की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।